एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है और एक बार फिर हम हाजिर हैं आज के दौर के एक जरूरी मुद्दे पर गहरी नजर डालने के लिए।
बिल्कुल, और आज का विषय तो ऐसा है जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है, हमारी डिजिटल दुनिया और उसका हमारे समय और हमारे ध्यान पर असर। मजा, बात करने में मजा आएगा।
मैं हूं आपकी साथी मेजबान, और आज हम जिस किताब की पड़ताल कर रहे हैं वो है रॉबर्ट हसम की एनालॉग। शीर्षक ही सोचने पर मजबूर करता है ना, डिजिटल के जमाने में एनालॉग की बात।
सही कहा। ये किताब पूछती है कि क्या इस भागदौड़ भरी डिजिटल जिंदगी में, जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, हम कुछ बुनियादी, कुछ जरूरी चीजें खोते जा रहे हैं।
हाँ, ये तो है। ऐसा लगता है जैसे रुकने का, सोचने का वक्त ही नहीं बचा।
बिल्कुल, ये आज इसलिए बहुत मायने रखता है क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं, लगभग पूरी जिंदगी बन गई है। लगातार बजते फोन, नोटिफिकेशंस की बाढ़, स्क्रीन पर दौड़ती जानकारी, इसने हमारे वक्त को महसूस करने का तरीका ही बदल दिया है।
फोकस करना कितना मुश्किल हो गया आजकल।
वही तो सवाल उठता है, क्या वक्त सच में हमारी मुट्ठी से फिसल रहा है? ये किताब इन्हीं सवालों से जूझती है और एनालॉग यानी थोड़ी धीमी, ज्यादा मानवीय, ज्यादा वास्तविक चीजों की अहमियत बताती है।
दिलचस्प। तो इससे पहले कि हम किताब की गहराइयों में उतरे, जरा लेखक के बारे में जान लेते हैं। ये रॉबर्ट हसन है कौन?
रॉबर्ट हसन वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न यूनिवर्सिटी में मीडिया और कम्युनिकेशन के प्रोफेसर हैं। मतलब कोई नए खिलाड़ी नहीं है इस मैदान में। पिछले 20 सालों से भी ज्यादा वक्त से वो इसी पहेली को सुलझाने में लगे हैं कि टेक्नोलॉजी, हमारा समय और समाज, ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हैं और एक दूसरे को कैसे बदल रहे हैं। इट्स या सॉफ्टवेयर की बात नहीं करते, बल्कि ये देखते हैं कि इन चीजों का हमारी सोच, हमारी भलाई, हमारे रिश्तों पर क्या गहरा असर पड़ रहा है। उनकी पिछली किताबें जैसे द कंडीशन ऑफ डिजिटैलिटी या एम्पायर्स ऑफ स्पीड इसी बात की नींव रखती हैं कि डिजिटल दुनिया ने हमारी रफ्तार और समय की समझ को कैसे बदल डाला है।
एम्पायर्स ऑफ स्पीड नाम से ही जाहिर है।
हाँ, और वो डिजिटल कंडीशन और कॉग्निटिव कैपिटलिज्म जैसे चीजों के आलोचक भी हैं। कॉग्निटिव कैपिटलिज्म मतलब ये सोच कि कैसे आज के दौर में हमारा ध्यान, हमारी सोच, हमारा डेटा ही असल में नया कैपिटल, नई पूंजी बन गया है। कंपनियां इसी पर तो खेल रही हैं।
मतलब हमारा दिमाग, हमारा टाइम, वो ही अब बिक रहा है एक तरह से।
बिल्कुल, और हसन इस सब पर लिखने के लिए बहुत सही इंसान है क्योंकि वो थ्योरी और असल जिंदगी की दिक्कतों को जोड़ते हैं। खासकर वो कालिय राजनीति या क्रोनोपॉलिटिक्स की बात करते हैं। मतलब समय पर किसका कंट्रोल है, ये भी एक तरह की पावर है।
क्रोनोपॉलिटिक्स, ये दिलचस्प है। तो किताब का मेन आइडिया क्या है, ये एनालॉग क्या कहना चाह रहा है?
देखो, किताब का मेन पॉइंट यह है कि हम सब एक टेम्पोरल क्राइसिस में जी रहे हैं। मतलब एक तरह का समय का संकट। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी की जो तेज रफ्तार है ना, इसने हमारे समय को सिकुड़ दिया है, छोटा कर दिया है।
समय का सिकुड़ना मतलब जैसे वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है, ऐसा महसूस होना।
हाँ बिल्कुल, और साथ ही हर चीज तुरंत चाहिए, अभी के अभी। इससे हमारी टेम्पोरल सॉवरेनिटी यानी अपने समय पर जो हमारा हक या कंट्रोल होना चाहिए वो खत्म हो रहा है। हम लगातार रिस्पॉन्ड मोड में हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, सोच समझ कर एक्ट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा।
सही बात है, लगता है जैसे हम टेक्नोलॉजी के गुलाम बनते जा रहे हैं।
यही तो हसन का तर्क ये है कि ये सिर्फ लाइफस्टाइल की बात नहीं है, ये हमारी मेंटल हेल्थ, हमारे सोशल कनेक्शंस, सबके लिए खतरा है। और इसका जवाब वो एनालॉग चीजों में देखते हैं।
तो एनालॉग से उनका मतलब क्या है? क्या वो कह रहे हैं कि वापस पुराने जमाने में चले जाओ, टाइपराइटर और चिट्ठियां इस्तेमाल करो?
नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। एनालॉग का मतलब यहां सिर्फ पुरानी टेक्नोलॉजी से नहीं है, इसका मतलब है वो चीजें, वो काम जो धीमी गति से होते हैं, जिनमें हम पूरी तरह डूब जाते हैं, जिनमें हमारे हाथ, हमारी इंद्रियां शामिल होती हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, किसी से आमने सामने बात करना, कोई हुनर सीखना।
अच्छा, मतलब डिजिटल की तेज बिखरी हुई दुनिया के मुकाबले कुछ ज्यादा ठोस, ज्यादा ठहराव वाली चीजें।
बिल्कुल, ये एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश है, एक सचेत चुनाव है कि हम अपना ध्यान, अपना समय कहां लगाना चाहते हैं। ये एक तरह का रेजिस्टेंस है उस लगातार ऑन रहने वाली कल्चर के खिलाफ।
तो ये किताब किसके लिए है, कौन पढ़े इसे?
मेरे ख्याल से तो ये हर उस इंसान के लिए है जो कभी कभी इस डिजिटल भागदौड़ से थक जाता है, जिसे लगता है कि फोन की घंटी या नोटिफिकेशन की आवाज से ध्यान टूट जाता है, या जो महसूस करता है कि असली दुनिया से कहीं कनेक्शन कमजोर पड़ रहा है।
मतलब लगभग हम सबके लिए। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। किताब की शुरुआती चैप्टर्स में हसन क्या नींव रखते हैं?
शुरू में हसन थोड़ा इतिहास बताते हैं कि समय को लेकर हमारी समझ कैसे बदली है। पहले खेतीबाड़ी के जमाने में सूरज और मौसम से वक्त तय होता था, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, घड़ियां आईं, सब कुछ टाइम टेबल के हिसाब से होने लगा, और अब है डिजिटल युग जहां सब कुछ नैनो सेकंड्स में मापा जाता है, सब इंस्टेंट है।
और यहीं पर वो क्रोनोपॉलिटिक्स और टेम्पोरल सॉवरेनिटी की बात करते हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल। क्रोनोपॉलिटिक्स मतलब समय पर किसका कंट्रोल है, कौन तय करता है कि हमारा समय कैसे इस्तेमाल होगा, और टेम्पोरल सॉवरेनिटी मतलब हमारा अपना अधिकार अपने समय पर, अपनी रफ्तार पर। हसन दिखाते हैं कि डिजिटल दुनिया में ये अधिकार हमसे छिनता जा रहा है।
और फिर वो कॉग्निटिव कैपिटलिज्म का जिक्र करते हैं कि हमारा ध्यान एक कमोडिटी बन गया है।
एग्जैक्टली। वो समझाते हैं कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एप्स, ये सब डिजाइन ही ऐसे किए गए हैं कि हमारा ज्यादा से ज्यादा ध्यान खींचे रखें, क्योंकि हमारा ध्यान, हमारा डेटा, यही उनकी कमाई का जरिया है। वो हमें लगातार व्यस्त रखते हैं, नोटिफिकेशंस भेजते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा समय उनकी दुनिया में बिताएं।
इसका हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है? आपने न्यूरोसाइंस का जिक्र किया था।
हाँ, वो बताते हैं कि ये लगातार छोटे छोटे स्टिमुलस, ये मल्टीटास्किंग की आदत, ये हमारे दिमाग के फोकस करने की क्षमता को कमजोर करती है। हम गहरी सोच, लंबे समय तक ध्यान लगाने की आदत खोते जा रहे हैं। दिमाग जैसे लगातार एक हाइपर मोड में रहता है।
और यही शायद डिजिटल एक्सेलरेशन है जिसके बारे में किताब बात करती है। ये चीजें कैसे हमें तेज और तेज भगा रही हैं?
बिल्कुल। एल्गोरिथम्स हमें वही दिखाते हैं जो हमें और ज्यादा क्लिक करने पर मजबूर करें। पुश नोटिफिकेशंस लगातार हमारा ध्यान खींचते हैं। रियल टाइम डेटा हमें हर पल अपडेटेड रहने का दबाव डालता है। इस सब मिलकर समय को जैसे सिकोड़ देते हैं, टेम्पोरल कंप्रेशन जिसे कहते हैं। हमें लगता है वक्त भाग रहा है।
और नतीजे? ध्यान बटना, थकान।
हाँ, ध्यान का विखंडन, यानी हम किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते। लगातार छोटे मोटे फैसले लेने से होने वाली थकान, जिसे डिसीजन फटीग कहते हैं, और इन सब से पैदा होने वाला मानसिक तनाव, एंग्जाइटी, ये सब त्वरण के तर्क, यानी लॉजिक ऑफ एक्सेलरेशन का नतीजा है। डिजिटल दुनिया में स्पीड और एफिशिएंसी ही सब कुछ है, भले ही उसकी कीमत हमें गहराई या सुकून से चुकानी पड़े।
ये तो सिर्फ व्यक्तिगत स्तर की बात हुई, समाज पर, जैसे लोकतंत्र या काम करने के तरीकों पर इसका क्या असर पड़ रहा है?
हसन इस पर भी बात करते हैं। लोकतंत्र के लिए देखिए, विचार विमर्श, गहराई से सोचना, अलग अलग नजरियों को समझना जरूरी है। लेकिन जब सब कुछ तेज खबरों, वायरल ट्वीट्स और तुरंत रिएक्शन पर टिका हो, तो वो गहरी समझ कहां से आएगी? सोशल मीडिया की दुनिया अक्सर चीजों को बहुत सरल या ब्लैक एंड व्हाइट बना देती है।
हाँ, न्यूआंस्ड चर्चा तो मुश्किल हो जाती है।
बिल्कुल। और शिक्षा में भी यही हो रहा है, फोकस सिर्फ रटने, टेस्ट पास करने और जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करने पर ज्यादा है। जो असल सीखना है, जिसमें सोचना, सवाल करना, क्रिएटिविटी शामिल है, वो पीछे छूट जाता है।
और काम की जगह पे, वहां तो शायद ये प्रेशर और भी ज्यादा है।
बहुत ज्यादा। गिग इकोनॉमी हो या रेगुलर जॉब्स, हमेशा ऑन रहने की उम्मीद, कभी भी ईमेल या मैसेज का जवाब देने का दबाव, ये काम और जिंदगी के बीच की लाइन को मिटा रहा है, जिससे बर्नआउट बढ़ रहा है। एआई के आने से ये और तेज हो रहा है, क्योंकि मशीनें तो थकती नहीं, तो इंसानों से भी वैसी ही उम्मीद की जाने लगती है।
ये सब सुनकर तो थोड़ा निराशाजनक लग रहा है। रिश्तों पर क्या असर होता है इसका?
रिश्तों पर भी गहरा असर है। सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स ने हमें कनेक्टेड तो रखा है, पर शायद वो कनेक्शन उतना गहरा नहीं रहा। हर चीज इंस्टेंट है, जवाब तुरंत चाहिए। इससे हमारी सहानुभूति, एक दूसरे को समझने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। हम शायद रिश्तों को भी तेज और एफिशिएंट बनाने की कोशिश करने लगते हैं, जो मुमकिन नहीं है।
तो फिर एनालॉग विकल्प क्या है? क्या वाकई कोई रास्ता है सबसे बाहर निकलने का?
हाँ, हसन का कहना है कि एनालॉग सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया नहीं, बल्कि एक जरूरी प्रतिरोध है। ये उन चीजों को वापस लाने के बारे में है जो हमें धीमा होने, गहराई से महसूस करने और अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने का मौका देती है। जैसे कोई हॉबी अपनाना जिसमें हाथों का इस्तेमाल हो, पढ़ना, ध्यान करना, या बस बिना किसी डिवाइस के प्रकृति में समय बिताना।
मतलब टेक्नोलॉजी को पूरी तरह छोड़ना नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना और जिंदगी में संतुलन लाना।
बिल्कुल। और इसमें एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, घर्षण, यानी फ्रिक्शन का। डिजिटल दुनिया हर चीज को आसान, फ्रिक्शनलेस बनाने की कोशिश करती है। एक क्लिक में खाना ऑर्डर, एक स्वाइप में डेटिंग। लेकिन हसन कहते हैं कि थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ा इंतजार, थोड़ा एफर्ट, ये चीजों को ज्यादा मीनिंगफुल बनाता है। जैसे किताब के पन्ने पलटने का अनुभव, या किसी से मिलने के लिए सच में कहीं जाना।
हाँ, ये बात तो है, आसानी हमेशा बेहतर नहीं होती, तो क्या हम इस डिजिटल बहाव का विरोध कर सकते हैं? किताब कुछ रास्ते सुझाती है।
हाँ बिल्कुल। हसन, प्रतिरोध के अभ्यास यानी प्रैक्टिसेस ऑफ टेम्पोरल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। इसमें पर्सनल लेवल पर चीजें हैं, जैसे ध्यान लगाना सीखना, एक बार में एक ही काम करना यानी मल्टीटास्किंग से बचना, अपने डिजिटल डिवाइस के इस्तेमाल पर नजर रखना, कभी कभी डिजिटल डिटॉक्स करना।
डिजिटल डिटॉक्स भी आजकल काफी सुनने में आता है।
हाँ, और ये जरूरी भी है। इसके अलावा एनालॉग हॉबीज अपनाना, जैसे बागवानी, पेंटिंग, कुछ भी जिसमें आप अपने हाथों और दिमाग का इस्तेमाल करें बिना स्क्रीन के। कम्युनिटी लेवल पर भी बदलाव आ सकते हैं, जैसे काम के घंटों को लेकर नियम बनाना, राइट टू डिस्कनेक्ट यानी काम के बाद पूरी तरह ऑफलाइन होने का अधिकार।
यानी सिर्फ व्यक्तिगत कोशिशें काफी नहीं है, हमें सिस्टम लेवल पर भी सोचना होगा।
बिल्कुल। हसन कहते हैं कि धीमा होना, डिस्कनेक्ट करना, ये सिर्फ पर्सनल चॉइस नहीं, ये एक तरह का पॉलिटिकल एक्ट भी है। ये उस अटेंशन इकोनॉमी का विरोध है जो हमारे समय और ध्यान को लगातार हड़पना चाहती है।
तो अगर हम किताब के मुख्य संदेशों को समेटें तो क्या कहेंगे? पहला बड़ा थीम क्या है?
सबसे पहला तो यही काली उपनिवेशीकरण या कॉग्निटिव कैपिटलिज्म वाली बात है। कैसे डिजिटल सिस्टम्स हमारे समय और ध्यान पर कब्जा कर रहे हैं, उसे एक संसाधन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए, हम सोशल मीडिया पर कितना वक्त बिताते हैं और उससे किसको फायदा होता है, हमें या उन कंपनियों को?
हाँ, ये सोचने वाली बात है। भारत में भी हम ये देखते हैं, हमेशा ऑनलाइन रहने का दबाव, हर चीज का ऐप होना।
बिल्कुल। दूसरा बड़ा थीम है त्वरण का तर्क और उसके मुकाबले में धीमेपन की जरूरत। ये जो लगातार तेजी की मांग है, ये हमारे सोचने की क्षमता, हमारी मेंटल हेल्थ को खराब कर रही है। हमें जानबूझकर धीमे होने की जरूरत है, चीजों को समझने, महसूस करने के लिए।
जैसे हमारे यहाँ शहरों की भागदौड़ वाली जिंदगी या बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर, शायद वो इसी का हिस्सा है।
हाँ, काफी हद तक। तीसरा थीम है घर्षण का महत्व। जैसा हमने बात की, हर चीज का आसान हो जाना हमेशा अच्छा नहीं होता। थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ा इंतजार अनुभव को ज्यादा यादगार और कीमती बना सकता है।
जैसे हाथ से खाना बनाना या कोई चीज खुद बनाना, उसमें एक अलग संतुष्टि होती है जो शायद ऑनलाइन ऑर्डर करने में नहीं।
सही कहा। चौथा थीम है भौतिकता और शारीरिक अनुभव का महत्व। डिजिटल दुनिया अक्सर हमें हमारे शरीर और आसपास की असली दुनिया से दूर ले जाती है। किताब याद दिलाती है कि छूना, महसूस करना, आमने सामने मिलना कितना जरूरी है।
जैसे त्योहारों की तैयारी में वो मिलकर काम करना या दोस्तों से सच में मिलना, सिर्फ वीडियो कॉल पर नहीं।
हाँ, और पांचवा और शायद सबसे जरूरी थीम यह है कि हमारा ध्यान एक राजनीतिक चीज है। हम अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं, यह तय करता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और कैसे उस पर असर डालते हैं। एनालॉग अभ्यास हमें अपना ध्यान वापस अपने कंट्रोल में लाने में मदद कर सकते हैं। ये एक तरह का प्रतिरोध है।
ये तो सच में सोचने पर मजबूर करने वाले थीम्स हैं। किताब में कुछ ऐसी लाइनें भी होंगी जो सीधे दिल पर लगती हों?
हाँ, कई हैं। हसन की लिखाई काफी असरदार है। जैसे एक जगह वो कहते हैं, समय आखिरी उपनिवेश बन गया है।
वाह, मतलब जैसे जमीनों पर कब्जा होता था, अब हमारे वक्त पर हो रहा है।
बिल्कुल। हमारा ध्यान, हमारा समय, ये अब बाहरी ताकतें कंट्रोल कर रही हैं। एक और लाइन जो मुझे बहुत असरदार लगी वो है, लोकतंत्र एक नोटिफिकेशन के अंतराल में मर जाता है।
हाँ, ये आपने पहले भी जिक्र किया था। इसका मतलब है कि लगातार डिस्ट्रैक्शन हमें सोचने समझने का मौका ही नहीं देता।
सही। गहरे विचार विमर्श के लिए जो शांति और फोकस चाहिए, वो इस लगातार बजते रहने वाली दुनिया में खत्म होता जा रहा है। और एक और बात जो वो कहते हैं, एनालॉग अतीत में लौटना नहीं बल्कि भविष्य को पुनः प्राप्त करना है।
अच्छा, ये बहुत पॉजिटिव नजरिया है। मतलब ये पुरानी चीजों का मोह नहीं बल्कि बेहतर जिंदगी जीने का तरीका चुनना है।
हाँ, ये नॉस्टैल्जिया नहीं बल्कि एक एक्टिव चॉइस है मानवीय मूल्यों को बचाने की। और एक और जरूरी बात, घर्षण कोई बाधा नहीं बल्कि वो चीज है जो जुड़ाव और अर्थ पैदा करती है।
यानी मुश्किलों से ही चीजों की कीमत समझ आती है।
बिल्कुल। और आखिर में एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है, समय का अधिकार उतना ही जरूरी होता जा रहा है जितना निजता का अधिकार। हमें अपने समय और ध्यान को बचाने के लिए शायद नए तरह के अधिकारों की जरूरत है।
ये सारे विचार तो बहुत गहरे हैं, इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकल तरीके?
बिल्कुल। व्यक्तिगत स्तर पर जैसे मैंने कहा, अटेंशन ट्रेनिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन या बस एक वक्त में एक काम पर ध्यान देना, मल्टीटास्किंग से बचना।
हाँ, ये मल्टीटास्किंग तो आजकल जैसे एक बैज ऑफ ऑनर बन गया है, लेकिन शायद नुकसान ज्यादा करता है।
सही कहा। और एक चीज है टेम्पोरल ऑडिट करना, यानी ये देखना कि हमारा समय असल में जा कहाँ रहा है, कौन सी ऐप्स, कौन सी आदतें हमारा वक्त खा रही हैं। फिर कोई एनालॉग हॉबी शुरू करना, पढ़ना, लिखना, गार्डनिंग, पेंटिंग, कुछ भी जो आपको स्क्रीन से दूर ले जाए।
डिजिटल डिटॉक्स की भी बात हुई थी, शायद हफ्ते में एक दिन या कुछ घंटे पूरी तरह ऑफलाइन रहना।
हाँ, ये बहुत मददगार हो सकता है, इसे डिजिटल सबाथ भी कहते हैं। काम की जगह पर भी हम बदलाव ला सकते हैं।
जैसे
अपने काम के घंटों की सीमाएं तय करना। जरूरी नहीं कि हर ईमेल या मैसेज का जवाब तुरंत दिया जाए। मीटिंग्स कम करना या डीप वर्क यानी बिना डिस्टर्बेंस के काम करने के लिए समय निकालना। और जो ये 24/7 उपलब्ध रहने का कल्चर है, उस पर सवाल उठाना।
और समाज के तौर पर हम क्या कर सकते हैं?
सामुदायिक स्तर पर भी बहुत कुछ हो सकता है। टेम्पोरल सेंचुरीज बनाने का विचार है, ऐसी जगह जहां डिजिटल डिवाइस या तो बंद हों या उनका इस्तेमाल कम हो, जैसे कुछ कैफे, पार्क या लाइब्रेरीज। स्थानीय छोटे व्यवसायों को सपोर्ट करना, जो मशीनी तेजी की जगह इंसानी टच और क्वालिटी पर ध्यान देते हैं।
और शायद सबसे बड़ा बदलाव तो हमारे नजरिए में लाना होगा, है ना?
बिल्कुल, समय को देखने का नजरिया बदलना, हर पल को भरने की कोशिश न करना। कभी कभी बोर होना या इंतजार करना भी जरूरी है। वो खाली वक्त ही है जहां नए आइडियाज आते हैं, हम सोचते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं।
ये वाकई सोचने लायक बातें हैं। मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख शायद ये घर्षण वाली बात थी। हम हमेशा चीजों को आसान बनाने में लगे रहते हैं, पर शायद थोड़ी मेहनत, थोड़ा इंतजार जरूरी है। और ये कि समय पर हमारा कंट्रोल सिर्फ पर्सनल मैनेजमेंट का मुद्दा नहीं, बल्कि एक तरह से पॉलिटिकल भी है।
हाँ, मेरे लिए भी कालीय संप्रभुता का कॉन्सेप्ट बहुत अहम था। अपने समय पर अपना अधिकार वापस पाना और ये जानना कि एनालॉग चीजों की तरफ लौटना सिर्फ पुरानी यादों में खोना नहीं, बल्कि एक जरूरी कदम है अपनी इंसानियत को बचाने का। शायद श्रोताओं के लिए एक छोटा सा सवाल छोड़ सकते हैं। ऐसी कौन सी एक एनालॉग एक्टिविटी है जिसे वो इस हफ्ते अपनी जिंदगी में वापस लाने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे वो सिर्फ 15 मिनट के लिए ही क्यों ना हो?
बहुत खूब, एक छोटा सा कदम शायद एक बड़ी शुरुआत हो सकती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।